यशोदानन्दनां ब्रजजनरञ्जना यशोदानन्दनां ब्रजजनरञ्जना यशोदानन्दनां ब्रजजनरञ्जना यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि गया राधा माधव कुंज विहारे गया राधा माधव कुंज विहारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरनाथ कृष्ण भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवृंद की श्री पुरुषोत्तम मास की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। हरे कृष्णा। एकत्रित सभी हरि भक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन की कथा में, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पुरुषोत्तम मास बड़ा पवित्र है भक्ति करने के लिए। हर 3 साल के बाद इसका आगमन होता है। अधिक मास के नाम से या तो फिर मल मास के नाम से जाना जाता था, और अधिक यानी कि एक्स्ट्रा है, बाकी महीनों के बीच में अलग से आ गया एक्स्ट्रा मंथ। तो इसलिए इसकी कोई विशेषता नहीं थी और ना इसको किसी ने स्वीकार किया था, इसलिए इस मंथ में कोई अच्छे कार्य नहीं करता था। ये सोचकर मल मास नाम दे दिया था, मल की तरह मल मास। और उसने बड़े दुखी होकर फिर देवताओं की शरण ली, लेकिन उन्होंने भी कुछ समाधान नहीं किया। फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। फिर शिव जी की शरण में और वहाँ से फिर नारायण की शरण में गए, और नारायण की शरण में जाने के बाद कृष्ण की शरण में गए। तो वहाँ पर जाकर भगवान ने उनको स्वीकार किया और अपना नाम दिया पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। भगवान ने उनको स्वीकार किया तो उनका महत्व भी बढ़ गया, भगवान के साथ उनका सीधा संबंध हो गया। बाकी महीने बाकी तिथि के लिए तो कोई देवी देवता होते थे, इसके लिए तो स्वयं भगवान ही हो गए। तब से इस महीने के जो देवता है वो स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हो गए, स्वयं कृष्ण स्वयं जगन्नाथ जी हो गए, इसलिए इसका बहुत महत्व तो बढ़ गया। इसलिए इस महीने में भक्त लोग अधिक से अधिक हरि भजन करने का प्रयास करते हैं। तो हर 3 वर्ष में आता है, इसलिए भी इसका महत्व अधिक है, क्योंकि हमारे जीवन काल में हम जितने वर्ष जिएंगे तो बहुत कम अवसर ऐसा प्राप्त होगा हमको पुरुषोत्तम मास मनाने का, क्योंकि हर 3 साल के बाद प्रकट होगा ये। इसलिए भक्त लोग बड़ा विशेष यत्न करके इसका पालन पोषण करते हैं, इसमें भक्ति का यजन करते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हम पुरुषोत्तम मास में सत्संग सुनने का ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 30 दिन यहाँ पर सत्संग होगा और यथासंभव भगवान और भगवान के भक्तों के लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। वैसे तो पिछले पुरुषोत्तम मास में हमने ऐसा सोचा था कि जब राम कथा पूर्ण हुई थी तब, कि आगे आने वाले पुरुषोत्तम मास में गौर कथा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में प्रकट हुए हैं तो पूरी गौर कथा तो नहीं करेंगे, लेकिन भक्त चरित्रों के ऊपर कथा करेंगे, अलग अलग भक्तों के चरित्र वर्णन करेंगे, जिसमें महाप्रभु के और महाप्रभु के पार्षदों के चरित्रों का भी वर्णन करेंगे। महाप्रभु भी भक्त रूप में ही प्रकट थे, तो भक्त चरित्र ये भी एक अद्भुत भक्ति ग्रंथ है, जिसको भक्त माल के नाम से भी जाना जाता है, माला जिसको गले में पहनते हैं, फूलों की माला जैसे गले में पहनते हैं। तो उसमें जो फूल होते हैं, एक 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 फूल को धागे में पिरोया जाता है और फिर भगवान को पहनाया जाता है। लेकिन इन मालाओं में भगवान को सबसे अच्छी माला लगती है अगर पहनने में कोई, तो वह है भक्त रूपी फूल माला। एक भक्त का चरित्र, दूसरे भक्त का चरित्र, तीसरे भक्त का चरित्र, सबको पिरो दिया जाए, तो अनेक भक्तों के चरित्र को पिरोने के बाद जो माला बनती है वो भक्तों की माला है, भक्त माल है वो, जिसको भगवान स्वयं गले में पहनते हैं और भगवान को बहुत अच्छा भी लगता है इसको पहनने से। इसलिए भगवान की जो निजी सुख की जो पूंजी है ना वो भक्तों का चरित्र है। तो एक बार के प्रसंग में ये विचार विमर्श हो रहा है श्रेष्ठता के बारे में, तो बहुत सारे ऋषि मुनि पधारे हैं, चर्चा हो रही है श्रेष्ठता के विषय में, किनको श्रेष्ठ कहा जाए। तो वहां पर किसी ने कहा देखो भूमि है सबको आधार देती है इसलिए भूमि को श्रेष्ठ कहते हैं, किसी ने कहा कि भूमि तो समुद्र से घिरी हुई है इसलिए भूमि से समुद्र बड़ा हो गया तो समुद्र को श्रेष्ठ कहते हैं, किसी ने कहा कि समुद्र को तो अगस्त मुनि पी गए थे तो मुनि बड़े हुए समुद्र से तो अगस्त मुनि को श्रेष्ठ कहते हैं। कहते अगस्त जी तो सप्त ऋषियों के रूप में आकाश मंडल में तारे के रूप में विराजते हैं, लेकिन जब सूर्य प्रकट होता है तब तारे को कोई नहीं पूछता, वो दिखता भी नहीं, तो सूर्य श्रेष्ठ है। फिर तो कहते सूर्य तो भगवान की आंख के रूप में है, सूर्य और चंद्र तो एक तरीके से, और भगवान के प्रकाश से ही सूर्य का प्रकाश है तो भगवान श्रेष्ठ है। कहते भगवान को तो भक्त लोग अपने हृदय में रखते हैं लेकिन इसलिए भक्त लोग श्रेष्ठ है। अब बात भक्तों पर आके अटक गई, अब क्या करें। तो निर्णय यह निकला कि सभी में अगर कोई महान है तो भगवान के भक्त महान है, और भगवान भी उन भक्तों के विषय में सुनने में बहुत इच्छुक है, भगवान को बड़ा आनंद आता है, भगवान के चरित्र को सुनकर भगवान को जितना सुख नहीं मिलता उससे अधिक सुख उनको भक्तों के चरित्र को सुनकर मिलता है। इसलिए भगवान खुद भी इस भक्त चरितावली भक्तमाल ग्रंथ के प्रथम श्रोता के रूप में प्रकट है, कोई सुने ना सुने लेकिन भगवान इन चरित्रों को जरूर सुनते हैं। कई ऐसे भी भक्त हैं जो सिर्फ भगवान को कथा सुनाने के लिए भगवान के विग्रह के सामने बैठते हैं और सिर्फ भगवान को ही कथा सुनाते रहते हैं भक्तों की लीलाओं की, और भगवान सुनते भी हैं, उनको अच्छा भी लगता है सुनकर। तो भगवान सुनते हैं उसका भी एक प्रमाण है भक्त चरित्रावली का। ये जो वर्णन हो रहा था जयपुर में राधा गोविंद देव जी मंदिर के सामने प्रांगण में, तो संत महात्मा भक्तों की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, और कुछ दिन वर्णन करने के पश्चात किसी जरूरी कार्य के लिए उनको विवश होकर उस कथा को वहां पर विराम रखते हुए जाना पड़ा। कुछ दिन का कार्य समापन करने के बाद जब वो पुनः वापस पधारे तो वहां पर जो श्रोता आते थे कथा सुनने के लिए वो आ गए, और उन्होंने सबसे पूछा कि हम कथा करते करते कहाँ पहुंचे थे बताइए जरा। तो सभी लोग एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, हम कथा करते वहां कहाँ पहुंचे थे, वक्ता पूछ रहे कि कहाँ पहुंचे, कोई बता नहीं रहा कहाँ पहुंचे थे। तो जो वक्ता थे जो संत जी थे उन्होंने कहा जब आप लोगों को ठीक से नहीं सुनना है, श्रद्धा नहीं है आप लोगों की, आपको ये ज्ञात भी नहीं है कि कहाँ पहुंचे थे, मतलब आप ठीक से नहीं सुन रहे हैं, तो फिर कथा कहने का क्या तात्पर्य है, हम उड़ जाते हैं, अब कथा छूट रही है वो उठ रहे हैं। उतने में गोविंद देव भगवान बोलते हैं कथा व्यास जी को, हमारा कथा का प्रसंग था वो इस संत की कथा तक पहुंचा था और वो भी आधा है, इस संत की कथा अभी आगे आधी चलानी बाकी है। गोविंद देव भगवान ऐसा स्वयं बोलते हैं। जब गोविंद देव जी सुन बोलते हैं और गोविंद देव जी को बड़ा दुख लगता है कि भी कथा खड़ी हो रही है, कथा बंद होने जा रही है। तो गोविंद देव जी बड़े दुखी हो जाते हैं और गोविंद देव जी खुद वर्णन करते कि हम यहाँ थे। तो गोविंद देव जी ने जब बताया तो इस बात से वो संत थे, उन्होंने सोचा कि अगर आप लोग सुने ना सुने कोई बात नहीं, लेकिन गोविंद देव जी को सुनने का रस है और उनको पता भी हम कहाँ पहुँचे थे और वो सुनना चाहते हैं आगे, तो अभी गोविंद देव जी के लिए ही कथा की जाएगी। सिर्फ जो सुनना चाहे सुने, नहीं सुनना चाहे तो ना सुने। तब से ये प्रमाण हो गया कि भक्त चरित्र को सुनने के लिए भगवान भी बहुत लालायित रहते हैं और भगवान स्वयं प्रथम वक्ता के रूप में विराजते हैं भक्तों का चरित्र सुनने के लिए। इसलिए भगवान से बढ़कर भक्तों की उपमा को बताया गया है। तो ये जो भक्त चरित्र जो होते हैं वो हमारे हृदय को इतने अच्छी तरीके से पवित्र करते हैं, जैसे जीव भगवत कथाओं का श्रवण करके पवित्र होता है, उसी प्रकार ये चरित्र भी जीव के हृदय को पवित्र करते हैं। तो कहते भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त हो गए भक्ति, स्वयं भगवान और गुरु, ये तो चार एक ही समान है। इनके पद वंदन किए, इन चारों में से किसी के प्रति अगर वंदन करते हैं, नाशत विघ्न अनेक, हमारे जीवन के अनेक प्रकार के जो विघ्न होते हैं वो निकल जाते हैं। तो फिर इन चारों में भी अगर विशेषता गिनी जाए तो किन की गिनी जाए, तो ये भी बड़ा उत्तम रीति से समझाया है कि भक्त भगवान और गुरु, इन तीनों के हृदय में भक्ति का वास होता है, इसलिए भक्ति उन तीनों के हृदय में चली गई। भक्ति भक्त में भी होती है, गुरु में भी होती है और भगवान में भी होती है, क्योंकि भगवान की तो अंतरंगा शक्ति की वो वृत्ति है, भगवान में भी होती है। तभी भक्ति सभी तीनों में होती है। अभी बच्चे कितने? तीन, भक्त भगवान और गुरु। गुरु कहते एक प्रकार का ऐसा पद होता है जो भगवत ज्ञान को समझने वाला जो व्यक्ति होता है वो उसको गुरु कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहते, उस ज्ञान को, उस पद को गुरु कहते हैं। तो कभी कभी कृष्णम वंदे जगत गुरु के रूप में भगवान भी गुरु होते हैं, और भक्त में वो लक्षण पाया जाए तो भक्त भी गुरु ही हुआ। इसलिए अभी बच्चे कितने? दो, भक्त और भगवान, अब दो ही बचे। तो कहते हैं कि भक्त के हृदय में तो सदा भगवान का वास होता है, भक्त हमेशा अपने हृदय में भगवान को बांध कर रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं के प्रति अनुग्रह रखते हैं। इसलिए भगवान भी वहां पर भक्तों के प्रति विवश होकर उनके हृदय में विवश होकर कभी उनसे बंध भी जाते हैं उनके प्रेम के लिए। तब भगवान भक्तों के हृदय में गए और भगवान अंगुष्ठ के रूप में, अंगुष्ठ के रूप में भी तो हृदय में विराजते हैं ना, तो उस रूप में भी भगवान कहाँ है? भक्त के भीतर में है। तो अभी बचे कितना? एक। तो इस कारण से जो भक्त होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, और भगवान को भी ये बात पूर्ण रूप से स्वीकार्य है कि भक्त मेरे से भी बढ़कर होता है। इसलिए भगवान भक्तों का बड़ा महिमा गाते हैं और भक्त लोग भगवान की महिमा गाते हैं, ये आमने सामने लीला चलती रहती है। तो इस प्रकार से ये जो भक्तमाल कथा हम सुनने जा रहे हैं, तो इसका विशेष तात्पर्य ये है कि ताकि हमारी भक्तों के प्रति प्रीति बढ़ जाए। और भक्तों का महत्व तो भगवान भी बताते हुए थकते हैं, ऐसे भक्तों के भी प्रति अगर हमारा भाव प्रकट हो जाए हृदय में तो क्या होता है कि हमारी भक्ति शीघ्र संपन्न हो सकती है। तो यहाँ ये भक्तमाल भक्त चरित्रावली की शुरुआत होती है भगवान के एक महान भक्त थे अग्रदेव जी महाराज, और उनके शिष्य थे नाभा गोस्वामी। उनका चरित्र आगे वर्णन करेंगे, लेकिन भक्त चरित्र की रचना पहले किस प्रकार से हुई थी ये हम समझते हैं, सुनते हैं। अग्रदेव जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे और एक दिन लीला चिंतन कर रहे थे मनी मन में, और नाभा जी उनके शिष्य उनको पंखा कर रहे थे गुरु जी के पास में खड़े होकर, और इस तरीके से पंखा कर रहे थे कि उनके भावों को समझते हुए पंखा कर रहे गुरु जी को। गुरु जी की इस प्रकार से सेवा करना ये शिष्य के लिए बड़ा भाग्य की बात होती है। अभी क्या हुआ, वो देख रहे कि गुरु जी अपनी मानसिक सेवा में भगवान का श्रृंगार कर रहे, उसमें भगवान के माथे पे मुकुट लगा रहे हैं, और उतने में उन्होंने क्या महसूस किया नाभा जी ने कि अग्रदेव जी का एक शिष्य जो समुद्री जहाज में कहीं जा रहा था और अचानक से तूफान आने के कारण जहाज समुद्र की लहरों में डूबता हुआ नजर आ रहा था, और शिष्य ने उस समय गुरु को याद किया, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। तो अग्रदेव जी महाराज उस समय भगवान की सेवा में लगे थे मानसिक रूप से, और उतने में शिष्य ने जब करुण पुकार की तो उनका जो ध्यान था वो उस तरफ चला गया। उनका ध्यान जैसे ही गुरु जी का ध्यान भगवान से उधर की ओर गया, उतने में नाभा जी ने क्या सोचा कि मेरे गुरु जी भगवान की सेवा पूजा का कार्य कर रहे थे और उनके किसी एक शिष्य के निवेदन के कारण उनको अपने इस सेवा पूजा से उस समुद्र की तरफ जाना पड़ा। उतने में नाभा जी ने अपने गुरु के मन के भावों को जानकर पंखा करते करते और पंखे को इस तरीके से दूर हटाया, दूर करके ऐसे पंखे को तेज कर दिया, उस पंखे की हवा से उन्होंने जहाज की तरफ पवन को मोड़ दिया, और जो जहाज डूब रहा था उस जहाज को स्थिर कर दिया। और गुरुजी भगवान की इस विशाल कलाकृति को भी देख रहे थे कि सुंदर सा समुद्र, और उनके मन के वहां पर पहुंचकर गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी आप पुनः प्रभु की सेवा की तरफ आइए, आप तो वहां प्रभु का श्रृंगार कर रहे थे, ये कार्य तो हो गया समझिए। और गुरुजी पुनः प्रभु की सेवा की तरफ आते हैं। तो मानसी सेवा का ये कार्य सर्वाधिक रूप में परम दिव्य होता है, लेकिन सभी के लिए करनीय नहीं होता, हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण अर्जुन जैसा वीर योद्धा और इतना अच्छा भक्त भी भगवान को यह कहता है कि प्रभु ये मन को केंद्रित करना तो असंभव जैसा है, बड़ा कठिन जान पड़ रहा है। तो उसके जैसा व्यक्ति भी अगर ये कह रहा हो तो सामान्य व्यक्ति कभी कभी कहते हैं कि हमारा भजन चलता है मन ही मन में चलता है। अर्जुन कह रहा है प्रभु हमारे बस की बात नहीं है, और हम कह रहे हमारा मन ही मन में चलता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारा मन ही मन में क्या चलता है वो हमको भी नहीं पता होता, क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। मन हमारा ऐसा है भूत जैसा, उसमें दृष्टांत वर्णन किया है कि एक व्यक्ति बार बार अतिशीघ्र सिद्धि करने के लिए एक साधु के पीछे लग गया, शॉर्ट में सिद्धि मिले ना, एकदम शॉर्ट में ऐसा कुछ करो। साधु कहते इतनी भी शॉर्ट में कहां से मिल जाएगी,
कहते एकदम शॉर्ट में मिलनी चाहिए सिद्धि। उन्होंने कहा भगवान तो इतनी जल्दी प्रसन्न होंगे नहीं, क्योंकि इतना कर्मों का बोझ में भगवान कहाँ प्रसन्न होंगे, लेकिन भूत सिद्धि दे देता हूँ। भूत तो क्या है, उसको शुद्धि क्या और अशुद्धि क्या, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो सिद्ध हो जाएगा। इसको भूत सिद्धि सिखा दी उसने, भूत सिद्धि की, और सिद्धि हो भी गई सफल। अब आ गया एक भूत, अब ये बड़ा खुश हो गया। वो उसको कहता है कि आप मेरे स्वामी हो, आप जो काम बोलोगे मैं करूंगा। वो कहते बहुत बढ़िया बात है, तो लो यही तो चाहिए था, इतना बड़ा विशाल कारोबार, इतनी सारी चीजें हैं, बताते रहेंगे काम अपना तो आसान हो गया सारा काम काज। वो भूत को एक काम बताए जाके, बड़ा परिश्रम वाला काम बताया, उसको लगे ना कि इतनी मेहनत वाला काम इसको देते कर देगा, उसको बोले वो कर भी दे, लेकिन करके तुरंत ही वापिस भी आ जाए। अब ये सोचे हो गया इतनी देर में, हाँ हो गया, दूसरा तो बोलो। कहते चलो और कठिन वाला बोलते हैं। दूसरा बोले और सांस ले, अपना दूसरा काम करने जाए वो व्यक्ति, उतने में तो आके खड़ा हो जाए, वो तो हो गया, और बताओ। अब ये काम बताने में विलंब करे तो उसके नजदीक नजदीक आए, गुर्राता रहे। वो कहते क्या प्रॉब्लम क्या है? कहते मैं खाली नहीं बैठता, मेरे को कुछ काम चाहिए, अगर मैं खाली बैठूं तो फिर व्यक्ति को ही मारता हूं, फिर व्यक्ति को खाता हूं, फिर इसलिए मैं खाली नहीं बैठता। कहता इतना काम कहां से लाऊं मैं? अभी वो काम बताए उतने में काम हो जाए, अब ये बड़ा परेशान हो गया। वो साधु के पास गया, मैंने बड़ी शीघ्र सिद्धि मांगी थी, आपने दे तो दी, लेकिन बड़ी समस्या हो गई उसमें, तो समस्या बताई। फिर साधु ने समाधान भी बताया। अब समाधान के लिए क्या किया उसने, जाओ भाई घने जंगल में जाओ, 108 गांठ लगी हुए सब आंबू लेके आओ। उसको जो टाइम नहीं लगा ढूंढने में, लेके आ भी गया, जमीन में गाड़ दो, गाड़ भी दिया, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ गया, बोलो काम बताओ, नीचे उतर जा, नीचे उतर गया, दे काम बताओ। कहते मैं जब तक तेरे को दूसरा कोई काम ना बताऊ ना, तब तक तेरे को ऊपर नीचे करते रहने का। अब ये ऊपर नीचे करता रहता है, जब इसको मौका लगे अभी कोई काम बताना है तो बीच में एक काम बता के फिर वापस उसको ऊपर नीचे चढ़ा देता है। तो मन ऐसा है कि इतने इतने विचार आते हैं उसमें कि थोड़ी देर भी अगर शांत बैठ जाए ना, हमको भी खाता है वो। हम खुद शांत अगर थोड़ी देर बैठ जाए तो ऐसे ऐसे विचार जिसका कोई लॉजिक या तर्क कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जीव को खाता रहता है। तो कहते अग्रदेव जी महाराज जी का मन तो इतना ज्यादा शांत चित्त था भगवान के चरणों में कि भगवान की मानस सेवा कर लेते थे, सबके बस के नहीं। लेकिन तो मानसिक सेवा बड़ी उहापोह करती है व्यक्ति के जीवन में, अगर वो स्थिर ना हो तो। एक शेख चिल्ली कुछ थोड़े पैसों के लिए बोझ उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, थोड़े पैसे मिलते थे उनको, बड़ा भारी बोझ उठाते थे। अभी बोझ उठाया हुआ है सर के ऊपर, सोचा एक दिन ज्यादा बोझ उठा लेता हूं, कुछ पैसे थोड़े जोड़ लूंगा, बकरी खरीद लूंगा फिर बाद में, और फिर क्या होगा, एक बकरी से दूसरी हो जाएगी, दूसरी से तीसरी हो जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी, फिर गाय खरीद लूंगा उससे, फिर ऐसे गाय की संख्या बढ़ जाएगी तो घोड़ा बड़ा मूल्यवान होता है, अभी घोड़े खरीद लूंगा, तो घोड़ा भी खरीद लिया, मन में खरीद लिया। अब क्या हुआ, घोड़ा खरीद लिया, कहते उसी घोड़े पे बैठ के शादी करने भी जाऊंगा, शादी करने भी चला गया, शादी करके वापस भी आ गया, कहते सुंदर सुंदर बच्चे भी होंगे, सुंदर सुंदर बच्चे भी हो गए। एक दिन के प्रसंग में एक बच्चा कह रहा है ये करना है, वो ये कर रहा है, उसके घर वाले कहते बिगड़ जाएगा, बार बार क्या उसका कहना करते हो। कहते बच्चा तो है, कहते बच्चा है लेकिन समझाना भी तो पड़ता है, बिगड़ जाएगा नहीं तो। घर वाले उसको डांट रही है, वो उसको प्रेम कर रहा है, कहते कहां डांट रही है उसको, कहते आप ही ने बिगाड़ के रखा, कहते तूने तू हमेशा डांटती रहती, कहते आप ही ने बिगाड़ के रखा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दे धनाधन रखो आप अपना बच्चा, कहते रखो तुम भी अपना बच्चा, ऐसे आमने सामने लड़ाइयाँ हो रही है। अब सर के ऊपर मटका रखा था, उसमें घी था, पुराने जमाने में वो 10 रुपए का घी था लेकिन पूरा मटका भर के घी था, और जिसने मटका रखवाया था वो भी पास में चल ही रहा था, और इसको मिलने वाला था 1 या 2 दाने मजदूरी के। अब ले अपना लड़का, कहते ऐसा करके दिया ऐसा घी नीचे, मटका गया फूट। वो चिल्लाया, क्या करते हो भाई, मटका मेरा फोड़ दिया, 10 रुपए का ये सारा घी बर्बाद कर दिया। अरे आपको क्या दिमाग खराब हो गया, 10 रुपए के घी पे घी के पीछे पड़े हो, मेरी सारी घर गृहस्थी खराब हो गई है। वो कहता है भाई तेरी घर गृहस्थी कहां से खराब हो गई, मैं तेरे को जानता हूं, तू तो शादीशुदा नहीं है। अरे क्या है शादीशुदा नहीं है, इतना पैसा कमाया, बकरी लाया, गाय लाया, घोड़ा लाया, घरवाली लाया, बच्चे हुए, लड़ाई झगड़ा हो गया, सारी घर गृहस्थी खराब हो गई, घी के पीछे पड़े हुए हो तुम भी। अब वो व्यक्ति को समझ नहीं आ रही बात की, बात क्या हो रही है। उसने इकट्ठा कर लिया, देखो इसने मेरा गीत बर्बाद कर दिया और ऊपर से बहाने मार रहा है। ले गए राजा के पास, कहते महाराज जरा इसको सुनिए कैसी बातें करता है। अब ये उस भाव में से बाहर ही नहीं आ रहा था। कहते महाराज मेरी सारी घर गृहस्थी उजड़ गई, इसको घी की पड़ी है। तब महाराज ने फिर विस्तार से सारी बात सुनी ना, तो वो भी हंस गए। कहते भाई तो ख्याली पुलाव बनाता ही रहा लेकिन ख्याल में पुलाव बनते रहे, तो बाहर तो आ जा, तेरी तो कोई गृहस्थी है ही नहीं, तेरी कोई बर्बादी नहीं हुई है। तो मानसिक चीजें ऐसी होती है, व्यक्ति सोचते सोचते बहुत दूर तक चला जाता है और फिर मान भी लेता है, अच्छा ऐसा हो भी गया है फिर, लेकिन वहां का वहां है, कहीं और नहीं गया वो। तो मन में बड़े सारे उहाप होते रहते हैं, इसलिए हरि भजन जो मानसिक रूप में होता है ना, ये सामान्य व्यक्तियों के बस की बात नहीं है, ये सामान्य लोग नहीं कर सकते। इसलिए मानसिक सेवा में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, साधारण व्यक्ति के बस का नहीं है। वृंदावन के अंदर भगवान मदन मोहन जी के मंदिर का एक व्यक्ति सेवक दर, जिसका सेवा था कि मटके में यमुना जी का जल लेके आने का भगवान के लिए, भाव भी बड़ा अच्छा था उसका, रोज सेवा करता था भगवान के लिए, भगवान का ध्यान करता रहता था। अब यमुना जी में जल भरने के लिए गया, जल भर के वापिस लौट रहा है। अब वापिस लौटते समय क्या हुआ, ब्रजवासी बालक थोड़ा उद्दंड था, उसने कहा अरे बाबा पानी पिला दे, उसको हाथ ही लगा दिया। पहले के समय में ऐसी सेवा पूजा करने वाले लोग ना दूसरे का स्पर्श भी नहीं होने देते थे। अब यार जगन्नाथपुरी मंदिर में जाओ ना, तो वहाँ भगवान की रसोई करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे स्पर्श भी नहीं करने देते किसी को, दूर दूर रहते हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति नहाया हो ना नहाया हो, अनेक जगह भ्रमण किया हो, इसलिए थोड़ा दूर रहते थे। इसको हाथ ही लगा लिया, पीछे ही पड़ गया, बाबा पानी दे दे, पानी दे दे, पानी पिला दे। इसको आ गया बड़ा गुस्सा, एक तो मेरे को अपवित्र कर दिया, भगवान की सेवा के लिए जल लेके जा रहा था वो भी मेरा बर्बाद कर दिया, और कसके एक तमाचा मार दिया बालक के गाल के ऊपर, बेवकूफ कहेगा जया से, तो वहां से चला गया। अभी क्या हो गया, ये जल लेके वापिस आए, उतने में पुजारी क्या देखते हैं, भगवान के गाल के ऊपर एकदम तमाचे के पूरे निशान पड़े हुए। कहते जय जय प्रभु क्या हो गया, कहते मेरे को थप्पड़ मारी जोर से। किसने मारी थप्पड़, कहते वो तेरा तुम्हारा जलहारी नहीं है जो जल लेने जाता है, उसने थप्पड़ मारी मेरे को। कैसे, ओ मैं मित्रों के साथ खेल रहा था बाहर, मेरे को प्यास लगी, मैंने उससे पानी मांगा, उसने मेरे को तमाचा लगा दिया। जब वापिस आया तब पुजारी ने फिर उसको ले गया भगवान के दर्शन कराने के लिए, चल दर्शन कर, भगवान के गाल पे उसी की उंगलियों के बराबर के निशान। कहते तूने थप्पड़ मारे थे किसी बालक को, कहते मदन मोहन जी खेलने गए थे वहां पर और तूने उन्हीं को थप्पड़ मार दी, तो भगवान को थप्पड़ बच गई। अब बड़ा पछता रहा है, बड़ा रो रहा है। तो मानसिक सेवा, वो भी एक अच्छा भक्त था, तो भगवान ने यह भी दिखाया कि मैं ऐसे खेलने के लिए भी जाता हूं, और भगवान ने वहां पर दर्शन भी दिए उसको, लेकिन वो पहचान नहीं पाया वहां भगवान को। तो मानसिक सेवाओं में भी भगवान की जब सेवा होती है तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है। कि ब्राह्मण बहुत गरीब, क्या भोग लगाया भगवान को, अब सामान नहीं है। किसी ने कहा मन से तो लगाओ, द्रव्य नहीं तो क्या बात है, मन से लगाओ। लगाया चूल्हा, उसके ऊपर रखा बर्तन, उसमें जमाया दूध, खूब दूध को जलाया जलाया जलाया, घाड़ा कर दिया, चावल डाले, चीनी डाला, एकदम सुंदर से खीर तैयार कर दी और कटोरे में निकाल के भोग लगाने जा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो गर्म है, लेकिन भोग लगाने लायक हुई कि नहीं, कितनी गर्म है। उंगली डाली और उंगली जल गई, आंखें खोल के देखा तो उंगली जली हुई है, वहां ना चूल्हा है, ना बर्तन है, ना खीर है, लेकिन उंगली जली हुई है। तो ऐसे भी भगवान की सेवाएं होती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए योग्य नहीं होती है। महान संत लोग इस प्रकार से भी सेवाएं करते हैं भगवान की। तो सेवा जो होती है वो बड़ी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। सेवाओं में अगर हम ध्यान नहीं रखते तो अपराध भी होता है। अधिकारी व्यक्ति को अधिकार के अनुरूप सेवा सौंपनी चाहिए। अनधिकारी व्यक्ति अगर कोई सेवा को संभाल लेगा तो उसमें अपराध भी करेगा। तो एक राजा ने बंदर को पढ़ाया था, इतना बढ़िया तरीके से बंदर को पढ़ाया था कि पंखा कैसे करने का। तो बंदर है ना, पंखा करना सीख गया। तो राजा बैठा आराम से और बंदर पंखा कर रहा है। अभी क्या हुआ कि इधर उधर मच्छर आए, राजा को स्पर्श कर रहा है, तो बंदर ऐसे पंखे से मच्छर उड़ा रहा है और पंखा करे जा रहा है, ऐसे ऐसे भगा रहा है, लेकिन मच्छर उड़ नहीं रहा। मच्छर बार बार जाके राजा के ऊपर, छाती के ऊपर जाके बैठ जाता है। इसने सोचा ये क्या परेशान कर रहा है, मेरे को ठीक से पंखा नहीं करने देता। तो राजा की बाजू में तलवार पड़ी थी, कहते इसको दंड देना पड़ेगा, ये ठीक से काम नहीं करता है। तलवार उठाई, मच्छर बैठा था राजा के छाती के ऊपर, अब तलवार उठाई, जोर से मारा, अब मच्छर तो मर ही गया लेकिन राजा भी मर गया। तो ये होता है सेवा अपराध, एक तरीके का सेवा अपराध। मतलब क्या कि विनाशी होगा। अन अधिकारी व्यक्ति अगर कभी ऐसी कोई चीजों को स्पर्श भी कर देता है तो नुकसान ही करता है। इसलिए कहते सामान्य रूप में जो सेवा होती है वो बड़ा श्रेष्ठ कार्य होता है। भगवत सेवा, भक्त सेवा बड़ी उत्तम कार्य होता है। इसके लिए भी व्यक्ति को अपने आप में क्या करना चाहिए, कुछ शिक्षा वगैरह होना चाहिए। ऐसे नहीं होती है सेवा करनी और सेवा गुरुजनों के माध्यम से सीख के करनी, उसमें बड़ा अंतर होता है। एक संत जी के पास एक व्यक्ति कथा सुनने जाता है और वहां पर वो संत जी कहते राम नाम से सब बंधन मुक्ति मिल जाती है। इसको अनुभव नहीं है लेकिन गुरु जी की बात को वो भी दोहराता है जब भी कथा में जाता है, तो राम नाम करो ना सब बंधन निकल जाते हैं। अब ये कथा करने गया तो जहां कथा कर रहा था पास में ही मकान में पोपट बंधा हुआ था पिंजरे में। पोपट को पढ़ा देते ना, थोड़ा थोड़ा बोलना सिखा देते। इसने बोला कि राम नाम करने से सब बंधन निकल जाते हैं। पोपट कहता है बिल्कुल झूठ, मेरे को बार बार लोग राम राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो कराते रहते हैं, बंधन तो क्या, मेरा तो पिंजरा भी नहीं जा रहा है, तुम बंधन की बातें करते हो, जवाब दो मेरी बात का। अब ये नया नया भगत प्रचार करने गया था, अब इसको जवाब नहीं आया, क्या जवाब दे क्या। एक गुरु जी के पास आया, कहते गुरु जी आपके जैसा ही प्रचार मैंने किया वो मेरी तो समस्या हो गई। वो तोता कहता है बंधन तो क्या, मेरा तो पिंजरा नहीं जा रहा है। तो गुरुजी कहते तोते को बोलो कि पिंजरे में मर जा। गुरु के कहे अनुसार शिष्य ने जाके बोल दिया, कहते पिंजरे में मर जा। वो झूठ मूठ का नाटक करके ऐसा पड़ गया जैसे अकड़ के पड़ा होता है वैसे। मालिक ने बाहर निकाला, देखा इसमें तो कोई प्राण नहीं, हो क्या करे, उतने में उड़ गया वो। लेकिन उड़ते उड़ते क्या बोल के गया, राम नाम से बंधन तो खुलते हैं लेकिन चाबी गुरुजी के पास होती है। राम नाम तो है लेकिन चाबी गुरु रखते हैं, वो जब चाबी देते हैं तो ही राम नाम से बंधन खुलता है, वैसे नहीं खुलता है। तो तात्पर्य यह है भगवत नाम भी है, भक्त भी है, ग्रंथ भी है, सब कुछ है, लेकिन जीव का कल्याण तब तक नहीं होता है जब विधिवत भक्त रूपी किसी गुरु के संपर्क में नहीं आता। जीव नाम रूपी गुरु के संपर्क में आने से तो जीव का नाश होता है, लेकिन भक्त रूपी गुरु के संपर्क में आने से तो जीव का भला होता है। जैसे रामानुजाचार्य के गुरु थे यादव प्रकाश जी, पहले सो कॉल्ड गुरु, वो तो ऐसे व्यक्ति थे जो रामानुजाचार्य की प्रसिद्धि को देखते उन्हीं को ही मारने का प्रयास कर रहे थे। तो ये नामदारी गुरु है सिर्फ मात्र, गुरु का नाम लेके रखा है, गुण एक भी नहीं है। अरे शिष्य की तरक्की के ऊपर तो गुरु प्रसन्न होता है। अगर गुरु देखते कि शिष्य मेरे से भी ज्यादा बढ़कर तरक्की कर गया तो गुरु को आनंद होता है, वो शिष्य को मारने नहीं दौड़ता। तो व्यक्ति को चाहिए भक्त रूपी गुरु धारण करे, नाम रूपी गुरु सिर्फ मात्र धारण ना करे। तो इस प्रकार से भक्तों की जो लीलाएं होती है वो बड़ी विशेष करके होती है। तो अग्रदेव जी महाराज ने नाभाजी के सामने देखा और बोला, तुमको कैसे पता चला कि मैं भगवान की सेवा कर रहा था और उसमें मैं भगवान को मुकुट पहना रहा था और वहां से फिर मैं समुद्र की तरफ चला गया और वहां समुद्र को निहारने में मग्न हो गया, फिर तुमने कहा कि गुरुजी आइए वापस प्रस्थान कीजिए, तो तुम इस बात को कैसे जान गए? और जहां मानसिक सेवा में मैं जिस स्थान पर सेवा करता हूं तुम वहां पर मेरे मन के अंदर प्रवेश करके वहां पहुंच गए। तब अपने उनके गुरुजी को नाभाजी के ऊपर बड़ा गर्व महसूस हुआ, वाह ऐसा शिष्य जो गुरु के मन में प्रवेश करके गुरु जिस स्थान पर सेवा करते वहां पहुंच गए। ये तो कभी कभी सुनने में आता है कि गुरु शिष्य के मन के भावों को जान लेता है, लेकिन यहां तो शिष्य गुरु के मन के भावों को जान रहा है। जब ये घटना हुई ना तब उनके गुरुजी ने अग्रदेव जी महाराज ने कहा कि फिर तो तुमको क्या करना चाहिए, फिर तो तुमको चाहिए कि अगर तुम किसी भक्त के मन की जान लेते हो तो फिर तो तुमको अनेक अनेक ऐसे भक्तों के लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। तुम तो भक्तों को भी समझते हो तो लीला का वर्णन करो। तो वो क्या कहते हैं, गुरुजी मैं क्या कर सकता हूं, आपकी प्रसादी के ऊपर पला बड़ा मैं क्या ही समझ सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। जब गुरुजी ने मौन में पूछा था ना कि कौन बोला मेरे को चलो वापिस करके, तो नाभाजी ने उस समय नहीं कहा कि मैं बोला था, गुरुजी जिसने आपने जिसको अपना जूठन देके बड़ा किया है ना वो बोला है। कहते अपना परिचय कैसे दिया कि गुरुजी आपकी जूठन से जिसका पालन हुआ है वो मैं बोला। तो गुरुजी बड़ा प्रसन्न हुए थे उसके उनके ऊपर, नाभाजी के ऊपर, कि तू तो इतना महान है कि तू तो हृदय तक की भी बातों को जानता है, तो फिर तुम अनेक भक्तों की लीलाओं के विषय में क्यों नहीं बताता फिर, जब हृदयों को भी समझता है जानता है। तो नाभाजी कहते हैं प्रभु मेरे जैसा व्यक्ति जो तो अपना भला नहीं कर सकता वो संतों के विषय में क्या वर्णन करेगा, वो अपनी विनम्रता को अपनी जगह पर बरकरार रख रहे। लेकिन गुरुजी कहते नहीं तुम्हारे में योग्यता है। नाभाजी कहते संतों की तो लीलाएं बहुत अलग अलग विचित्र विचित्र प्रकृति की होती है, संत तो मनमौजी होते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, एक जैसे तरीके से और एक जैसी सीधी लिटी में नहीं भी चलते हैं, कभी मूड आए वो करते हैं, मूड ना आए तो ना भी करे। अभी प्रसंग आया कि संतों की तो लीलाएं बड़ी अलग अलग विचित्र प्रकृति की होती है, दो संत जंगल के मार्ग से निकलते हुए जा रहे यात्रा करते करते थक भी गए हैं, भूख प्यास भी लगी है, एक जगह पर वहां बैठ गए, बैठे तो वहां क्या देखा, हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी को प्रणाम किया, अच्छा हनुमान जी की मूर्ति यहां पर। कहते हनुमान जी यहां जंगल में ऐसे ही बैठते होंगे, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, तो हम तो यहाँ से आगे निकल जाएंगे फिर हनुमान जी ऐसे बैठेंगे, कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। एक के मन में आया हम यहाँ जो जाए उसके पहले हनुमान जी के लिए एक झोंपड़ी जैसा निर्माण कर देते हैं ताकि हनुमान जी शांति से उसमें बैठ सके। तो बड़ा यत्न करके जंगल में से जो भी सामान उपलब्ध हो रहा था उस सामान को लाके हनुमान जी के लिए झोंपड़े तैयार कर दिए। हनुमान जी बैठे अभी अंदर, खुश हो गया मन से। दूसरा बोला उसके हृदय का भाव, अब झोंपड़ी देखी, हनुमान जी को अंदर बैठा देखा, तो दूसरा ऐसा मन ही मन सोच रहा है जंगल है, घर्षण होता है, आग भी लगती है, हनुमान जी झोंपड़े में बैठे होंगे, झोंपड़ी को आग लगेगी तो हनुमान जी को आग लग जाएगी, फिर तो झोंपड़ी में बैठना तो बड़ा डेंजरियस है। उसने मूर्ति उठा के झोंपड़ी के बाहर रख दी। वो कहता है झोंपड़ी के बाहर क्यों रखी? वो कहता है झोंपड़ी में रहना बहुत डेंजरियस है। कहते सुरक्षा भी चाहिए, शांति से झोंपड़ी में रहेंगे, कोई आवाज भी तो चाहिए। अब वो कहता नहीं झोंपड़ी में नहीं रहने चाहिए, कहते झोंपड़ी में रहने चाहिए। अब दोनों में घमासान हो गया, दोनों थे संत और दोनों साथ में ही रहते थे, लेकिन अपने अपने भावों को रखने के लिए अभी क्या हो गया, घमासान युद्ध हो गया, एक दूसरे को मुक्का मारे। तो हनुमान जी को यहां रख रहा है, वो कहते तुम हनुमान जी को वहां रखता है, चल पड़ा। हनुमान जी प्रकट हो गए, ओ ओ लड़ो मत लड़ो मत, शांति शांति शांति, देखो मैं यहां झोंपड़ी में रहता हूं, जब आग लगेगी ना तो एक काम करो सामने चबूतरा बना दो, चबूतरा भी बना के रखो, जब आग लगेगी ना मैं चबूतरे पे जाके बैठ जाऊंगा। ये बढ़िया कहा आपने, एक काम करो जाने से पहले चबूतरा भी बना देते। फिर तो सामने खुला चबूतरा बना दिया, हनुमान जी को प्रणाम किया और निकल गए वहां से। मन में क्या संतोष है, ठीक है रहेंगे शांति से, जब विकट आएगा परिस्थिति विकट होगी आग लगेगी तो चबूतरे पे बैठ जाएंगे, ठीक दोनों का काम हो गया, निकल गए वहां से। अब ऐसे ऐसे संतों की अपनी अपनी महिमा होती है और उनके चरित्रों का वर्णन करना, उनके भावों को व्यक्त करना, उनके भाव तो भगवान ही समझे। तो नाबाजी कह रहे प्रभु मैं उनके भाव को क्या बताऊं, कहते भगवान तो अंतर्यामी है तो वो चलो समझ ले, मेरे जैसा व्यक्ति क्या समझे। कहते संतों की तो लीलाएं अद्भुत होती है। सुखदेव जी जन्म ये सोचकर नहीं ले रहे कि प्रभु संसार में माया है, मुझे माया से दूर रहना है, इसलिए सुखदेव गुस्सा में कहते प्रभु मुझे माया से दूर करो तो मैं जन्म लूंगा, मैं माया के बीच में यहां जन्म नहीं लेना चाहता, ये तो ठगनी माया है, सबको ठगती है। तो सुखदेव गोस्वामी इस बात की जिद कर रहे हैं माया हटेगी तो मैं जन्म लूंगा, और मार्कंडेय ऋषि इस बात की जिद कर रहे हैं प्रभु अपनी माया दिखाओ। मार्कंडेय ऋषि को माया देखनी है, भगवान कहते हैं माया देखनी है, कहते आप माया दिखाओ, अपना प्रलय लीला दिखाओ। अब भगवान ने माया दिखाई तो मार्कंडेय ऋषि तो उस माया में बड़े परेशान हो गए, लहरों में इधर से उधर उछले जा रहे, समझ नहीं आ रहा है, इतना भयंकर दृश्य देखकर बड़े भयभीत से हो गए। कहते प्रभु एक भक्त कहता है माया से दूर करो, माया नहीं देखनी, दूसरा कहते हैं माया के दर्शन कराओ, और फिर है भी दोनों भक्त, तो ऐसे दो भक्तों की लीलाओं का वर्णन क्या करें, उनके भावों को कैसे समझाए कि उनके भाव कैसे होते हैं। इसलिए प्रभु भक्तों के चरित्रों का वर्णन करना सहज नहीं है। एक राजा भगवान का भक्त है, लेकिन कैसा भक्त है, कभी मुख से नाम नहीं बोलता। धर्म पत्नी कहती है एक बार तो नाम बोलो, ए आप परेशान मत करो, अपना अपना काम करो, हमारे पास बहुत सारे और भी काम होते हैं, बार बार यही चीज लेके मत आया जाया करो। रानी बिचारी बोलती नहीं, फिर मौका देखती है, मूड अच्छा होता है, फिर कभी एक बार बोल देती है। एक आध बार बोलने में हर्जा क्या है, जाता क्या है, बोल दो। कहते फिर लेके पीछे पड़ गए, जब बोला आपको एक बार, मेरे पास बहुत सारे काम है, अपना अपना करो, मेरे को अपना करने दो। रानी भगवान से प्रार्थना कर रही, प्रभु ये सारे गुण इनमें अच्छे हैं, हर एक गुण इनमें है, बस आपका नाम नहीं लेते, अगर ये ले ले तो कितना अच्छा हो जाए। अब क्या हुआ, रात्रि को सो रहे, रानी भी बगल में सो रही है, ये तो रात्रि को लीला दर्शन करते करते भावुक हो गए, पसीने पसीने हो गए। रानी जाग गई, देख रही है क्या हो रहा है, सोई हुई अवस्था में पसीना पसीना हो गए, हल्का हल्का मुस्कुरा रहे, भाव है, मुख से नाम ले रहे हैं। इनको तो जब नाम लेने के लिए बोलो तो लड़ते हैं, यहां मुख से रात्रि को नाम ले रहे। कहते रात्रि को मुख से नाम किसका चलता हो, जो तो दिन भर अभ्यास करता हो। लेकिन ये तो नाम बोलते ही नहीं, अभी रात को कैसे ले रहे। रानी ने उठाया उनको, उठो उठो उठो। रानी को लगा कि कुछ हो गया होगा, उठाया, क्या हो गया आपको, पसीना पसीना हो गए, अलग अलग प्रकार के भाव प्रकट हो रहे थे। और बड़ी आश्चर्य की बात बताऊं एक, कहते क्या, आप भगवत नाम ले रहे थे, आपके मुख से नाम निकला। अब राजा इतना ज्यादा भावुक था उस समय कि भाई मेरे मुख से, मेरे शरीर से नाम निकला, मतलब नाम गया, नाम तो मेरा प्राण, नाम तो मेरा सर्वस्व था, नाम गया। उसी समय राजा इतना अंतर्मुख होगा कि वहीं पर ही मर गया। भगवत नाम किसी के मुख से निकला, अंदर भर के रखा था, निकला तो बंदा व्यक्ति मर गया। रानी कहती है मैं पूरा जीवन इनके साथ जी, मुझे पता ही नहीं था इतने बड़े महान भक्त है कि इतने अंतर्मुख हो गए कि एक बार सुना नाम निकला उतने में मर गए। रानी बड़ी पश्चाताप करने लगी, ये तो दिन रात भजन कर रहे थे, मैं व्यर्थ सोच रही थी कि ये एक बार नाम ले ले। तो एक बार नाम लेने से मृत्यु हो रही है, ये सोच के अंतर्मुख अवस्था में नाम निकल गया। रामानुजाचार्य के गुरुजी कहते मैं तुमको नाम दे रहा हूं, लेकिन ये नाम तुमने अपने पास रखना, किसी को देना नहीं, अपने पास ही रखना। रामानुजाचार्य कहते भाई नाम से कल्याण होता हो तो गुरुजी ने मुझे दिया है, मेरा कल्याण होता है। तो फिर गुरुजी मना कर रहे, चलो गुरुजी की डांट खा लेंगे, लेकिन कल्याण हो तो हर्जा क्या है। वो मंदिर के गोपुरम के ऊपर जो बड़ा ऊंचा होता है, गोपुरम के ऊपर चढ़ गए और जोर जोर से भगवत नाम लेने लगे, जो भी इसको करेगा ना सबका कल्याण होने वाला है। अब एक भक्त एक बार नाम लेता है तो उसका ये परिस्थिति होता है, एक भक्त सबको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलता है लियो लियो लियो। कहते प्रभु संतों की अपनी अपनी लीलाएं हैं और अपनी अपनी लीलाओं में कहते संतों को समझना बड़ा कठिन है। कहते भगवान को समझना फिर भी आसान होता है, लेकिन संतों को समझना तो बहुत कठिन होता है। भगवान तो भगवत्ता का रूप भी प्रकट कर देते हैं, लेकिन संत वो भी नहीं करते। वो तो रहते इतनी विनम्रता में अपने आप को ऐसा दीनहीन बना के रखेंगे कि व्यक्ति पहचान ही नहीं सकता। अब जड़ भरत जी को देखकर कौन पहचाने महान संत होंगे। राजा राहुगण भी आध्यात्मिक व्यक्ति था, धार्मिक प्रकृति का था। हाँ, वो भी जब जा रहा था तो वो भी वहां पर एक संत से मिलने आश्रम में ही जा रहा था, लेकिन फिर भी जड़ भरत जी को नहीं पहचान पाया वो। तो संतों की तो लीला अलग अलग होती है। दक्षिण में एक संत नरसिंह भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं। किसी ने कहा भाई नरसिंह भगवान की सेवा पूजा कर रहे हो, सीताराम की करो, राधेश्याम की करो। कहते हम नहीं सीताराम जी की राधेश्याम की सेवा करते, हम ब्रह्मचारी हैं, वैरागी है, वो तो गृहस्थी है, इसलिए हम तो नरसिंह भगवान की सेवा पूजा करते हैं। वो कहने वाला व्यक्ति भी सोच में पड़ गया, ये कौन सा लॉजिक हो गया, भगवान गृहस्थी है और हम ब्रह्मचारी, इसलिए हम तो नरसिंह भगवान की पूजा करेंगे, हम नहीं गृहस्थी की पूजा करते। तो नरसिंह भगवान हंसने लग पड़े। अपनी अपनी सबकी भावना है, अपना अपना विचार है। भगवान भी सोचते होंगे भाई वैरागी मुझे गृहस्थी बना रहा है। तो ऐसा संतों का लीला होता है कि संतों में समझना, उनमें भेद करना या उनका बारीकी से निरीक्षण करना, ये सब चीजें इतना गोह्य होती है ना कि इन सब चीजों को समझना बड़ा कठिन होता है। हर एक का विचित्र विचित्र भाव होता है। वृंदावन में एक साधु थे, रात को 12 बजे ना तभी भगवान को भोग लगाए। एक संत उनके वहां पर कुटिया में आए हुए थे, रात को 12 बजे ने भोग लगाया, घंटी बजना शुरू कर दिया, घन 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 घन। वो कहते ये अभी क्या कर रहे हैं, सोचा भाई रात को उठ के भजन कर रहे होंगे, देखा तो ये थाली में सब सजा के भोग लगा रहे। उन्होंने कहा अभी क्या कर रहे हैं, अभी रात को 12 बजे कहते भोग लगा रहे। कहते आप कौन सी विधि से भगवान को रात को 12 बजे भोग लगाते हो। कहते देखो दिन भर भगवान को भोग लगता रहता है, दिन भर टाइम ही नहीं होता, और रात को क्या होता है, भगवान सोते हैं, रात को कोई पूछता ही नहीं भूख लगी नहीं लगी, अब रात को भी तो भूख लग सकती है, और रात को क्या होता है, भगवान के पास पूरा टाइम भी होता है, आराम से खा सकते हैं। इसलिए दिन भर में तो सब लोग भगवान को बिजी करके रखते हैं, इसलिए मेरा नंबर लगता नहीं, इसलिए मैंने रात के 12 बजे पकड़ लिए कि भगवान को अगर रात को भूख लगती हो तो भी, और भगवान के साथ अपना शांति से टाइम भी निकाल सकते क्योंकि भगवान फ्री होते उस समय, भगवान को भी कोई दूसरा परेशान नहीं कर रहा होता। इसलिए क्या है, खिलाना ही है ना भगवान को, भगवान को भोग ही तो लगाना है, हाँ तो रात को 12 बजे लगाएंगे भोग। वो जो संत आए थे कहते ठीक है राधे श्याम करके, वो सो गए, कहते इनका अपना भाव है अब क्या कहे। तो ऐसा होता है, संतों का अपना अपना लीला होता है, लेकिन ये कौन किन लोगों के लिए होता है, जो तो बड़े भाव व्यवस्था में होते हैं उनके लिए। कहने में तो रात को 12 बजे भोग लगाया जाए तब भी गलत नहीं है, अगर भाव हो वैसा तो कि भगवान रासलीला कर रहे हो, रासलीला करते समय भगवान को भूख भी लगी होगी रात्रि को, तो भगवान को खिलाने में हर्जा क्या है भी। अगर बाल रूप में भगवान को सोचते हो तो भी सोच सकते हो कि भाई बालक है रात को भूख भी लगती होगी, तो रात को खिलाने में हर्जा क्या है। तो विधि नियम अपनी जगह होते हैं, और अति उच्च भक्ति मार्ग में जब व्यक्ति प्रवेश कर जाता है तो भाव अपनी जगह होते हैं, और ऐसे भावपूर्ण संतों के लीलाओं का वर्णन जब करने की बारी आती है ना तो बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि इतनी उच्च अवस्था के संतों को समझने के लिए व्यक्ति की अपनी अवस्था कैसी होनी चाहिए। इसलिए गुरु जी ने तो आज्ञा दी है कि संतों की लीलाओं का वर्णन करो, लेकिन संतों की लीला समझे कैसे। प्रायः संत लोग संसार में अपने शरीर का त्याग करने की जब बारी आती है तो सोचते वृंदावन धाम चले जाते हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हुए वृंदावन धाम में शरीर का त्याग कर देंगे, भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसे एक संत थे, गृहस्थ थे, वृंदावन के बाहर रहते थे आगरा की तरफ, पूरा जीवन भजन किया, अब मरने की अवस्था पर आए हुए थे, शरीर छोड़ने वाले थे, तो लड़कों ने सोचा कि पिताजी ने पूरा जीवन भजन किया हुआ है, अभी वृंदावन ले चलते हैं, आखिर में वृंदावन मिल जाए उनको, जाओ तो भी अच्छा है, अपना अपना भाव है। लेकिन ये संत को वृंदावन ले जा रहे तो पूछ रहे कहाँ चल रहे, कहते वृंदावन जा रहे, ओ मूर्खो वृंदावन जा रहे हो, रुको रुको वापिस चलो। कहते बापूजी शरीर छोड़ेगा तो वृंदावन में छूटेगा तो अच्छी बात है। अरे मूर्खो वृंदावन तो कहते राधा और कृष्ण की लीला स्थली है, वहां तो भगवान नित्य नवीन लीलाएं करते हैं, कितनी सुंदर जगह है भगवान के, वो तो भ्रमण करने योग्य जगह है, और मेरे जैसा कप पित वात का शरीर, ऐसा मल मूत्र का ठेला वृंदावन में ले जाओगे और वहां पर रखोगे तो भगवान का भूमि अपवित्र नहीं हो जाएगा, चलो वृंदावन से वापिस चलो। उसने हट की और बाहर ले गए उसको। अरे कहते आत्मा को तो भगवान का भजन करना है, आत्मा भगवान के पास होनी चाहिए, अरे बाहर शरीर छोड़ देंगे आत्मा आ जाएगी भगवान के पास, क्या फर्क पड़ता है, चलो हट करके वृंदावन में गए वापिस ले आए, वृंदावन नहीं जाना कहते, वृंदावन में शरीर छोड़ेंगे भूमि को अपवित्र करेंगे क्या हम। तो ऐसा सबका अपना अपना भाव है, तो संतों के चरित्र को समझना बहुत कठिन होता है। एक संत की अपनी महिमा तो दूसरे संत की अपनी महिमा होती है। भगवान कृष्ण और अर्जुन द्वापर की लीला में साथ में है, भगवान कृष्ण और अर्जुन की अनेक लीलाएं भी हुई है। एक प्रसंग में कृष्ण को लगा कि अर्जुन के मन के अंदर क्या हो गया है, थोड़ा अहम सा आ गया है कि मैं अच्छा भक्त हूं। अभी अहम सा आ गया है, इस अहम को निकालने के लिए क्या करें, भगवान ने क्या किया, अर्जुन को लेकर एक वन में चले गए, वन में चले गए और वहां पर रास्ते में एक व्यक्ति को देख रहे हो, व्यक्ति कैसा है, एक हाथ में खुली तलवार है, शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, अवधूत वेश है, और अपना मुख है ना वो जमीन पे लगा के, जो सूखी सूखी घास है, वो पशु जैसे जमीन में से घास चरता है ना, वैसे जमीन पे मुख लगा के घास खा रहा है। अर्जुन ने देखा ये बड़ा विचित्र कार्य हो रहा है, हुष्ट पुष्ट प्रकृति का व्यक्ति, शरीर पे कपड़ा नहीं है, एक हाथ में खुली तलवार है और मुंह लगा लगा के सूखी घास खा रहा है। भगवान ने भी देखा, अर्जुन ने देखा, भगवान चुप रहे, कुछ नहीं बोले। अर्जुन कहते प्रभु ये क्या लीला हो रही है, प्रभु कहते पूछो। अर्जुन आए निकट में, कहते आपके कार्यों में कुछ समझ नहीं आ रही है, एक तरफ तो आपने तलवार रखी है, सूखी घास क्यों खा रहे हो आप यहां पर ऐसे मुंह लगा लगा के। कहते हरी घास में तो जीव होता है, हरी पत्तियों में जीव होता है, मैं नहीं चाहता किसी जीव को मारना, इसलिए मैं सूखी सूखी घास खाता हूं, उसमें जीव नहीं होता। कहते इतना अहिंसा का व्रत पालन करते हो आप, इतना अहिंसा का व्रत पालन करते हो तो इतनी मजबूत तेज तलवार हाथ में क्यों रखी है? अगर इतना ही अहिंसा का व्रत पालन करते हो तो ये तो कोई बात समझ में नहीं आ रही है, घास तक को तोड़ते नहीं, फिर तलवार किस प्रयोजन से रखी है? कहते तलवार रखी है कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूं मैं, वो मिल जाए तो उनको मारना है मुझे। अर्जुन आश्चर्य कर गया, सूखी घास तोड़ नहीं रहे, हरी घास खा नहीं रहे, सूखी घास चबा रहे, सोच के जीव हत्या ना हो जाए, और तलवार रखी है कुछ लोगों को ढूंढ रहे मारने के लिए। अर्जुन कहता आपकी आपकी बात, आपका रहस्य समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ठीक से बताओगे? कहते पहले तो वो ब्राह्मण चाहिए मुझे, जिसने भगवान के छाती के ऊपर लात मारी थी, वो मिल जाए तो उसको मारना है पहले मुझे। आज भी भगवान के दर्शन करता हो तो आज भी वैसा का वैसा पैर दिखाई देता है वहां छाती पे, इतना दर्द होता है, इतने सुकोमल भगवान के छाती पे पैर मारा, दिमाग नहीं उसका, वो ब्राह्मण मिले तो पहले उसको मारना है। कौन? भृगु ऋषि। कहते फिर और किसको ढूंढ रहे? कहते वो नारी को ढूंढ रहा हूं, इतनी मूर्ख, अपना झूठा भगवान को खिला दिया। कहते कौन नारी? अरे वही नारी जिसके 5 पति नहीं थे। अर्जुन को क्लिक हो गया, किसकी चर्चा कर रहा है, भगवान को झूठा खिलाते हैं। जब मैं सोचता हूं कि कैसे लोग अपना बचा हुआ भगवान को खिलाते हैं, कितना दुख की बात है, मेरे को बड़ा क्रोध आ रहा है, वो मिले तो उसको भी मारना है। अच्छा महात्मा जी, तीसरा किसको मारना है? कहते वो अर्जुन को मारना है, कैसा मूर्ख व्यक्ति है, जब तेरे में शक्ति नहीं तो मत युद्ध कर, शक्ति नहीं है तो कृष्ण को लेके आए तो युद्ध करने के लिए, सहयोग के लिए, और लाया भी सही तो लाके क्या बोलता है, आप रथ चलाओ मैं पीछे बैठूंगा। अब तेरे में शक्ति नहीं है तो तू क्यों फिर युद्ध कर रहा है, तू रथ चला, भगवान को बैठने दे पीछे, भगवान को मांग के ले आए और फिर वो रथ चलाने बिठा दिया, कैसा बेवकूफ व्यक्ति, उसको भी मार रहा है मुझे मिले तो। कहते महात्मा जी आपका एक कार्य अगर मैं कर दूं तो? कहते तू कर दे तो भाई बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, ये ले और तू कर देना। कहते ठीक है महात्मा जी, आप निश्चिंत हो जाइए, आप दुखी मत होइए, आपका काम मैं उसका उपचार में कुछ कर दूंगा, जाओ। कहते ठीक है पक्का करेगा? कहते हाँ। महात्मा जी ने तलवार दी और भगवान का ध्यान इतना ज्यादा कर रहे थे, वहीं शरीर छोड़ दिया, भगवत धाम को चल पड़े। अर्जुन तलवार लेके भगवान के पास आए, बड़ा मायूस सा मुख लेकर। भगवान कहते अर्जुन क्या हुआ? कहते कुछ नहीं प्रभु, चलो महल की तरफ चलते हैं। भगवान ने घटना पूछी, क्या हुआ? अर्जुन ने घटना बताई। अर्जुन को समझ में आ गया, मैं सोचता हूं बड़ा व्यक्ति, भगवान का भक्त, महान व्यक्ति, ये तो इतने अंतर्मुख अवस्था के व्यक्ति से घूम रहे हैं, कितनी अंतर्मुख अवस्था है उनकी, भगवान के प्रति लगाव कितना है उन लोगों का। तो इस तरीके से भक्तों को समझना तो बड़ा कठिन कार्य है। अर्जुन भी सोच रहा है कि मैं बड़ा महान भक्त हूं, जब उसको दृश्य दिखता है तो वो भी समझता है कि मैं मानता हूं अपने आप को बड़ा, लेकिन मैं बड़ा नहीं इतना ज्यादा। इसलिए एक भक्त को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अनंत अनंत भक्त है और अलग अलग प्रकार के असंख्य भाव होते हैं, न जाने कौन भक्त का कितना ऊंचा भाव होता होगा। इसलिए भक्त भक्त की परिभाषा में रहे, ये ना सोचे कि यार मैं तो बड़ा महान भक्त बन गया। ये एक प्रकार का दुर्गुण होता है, ये साबित करता है कि आप महान ज्यादा नहीं हुए। महानता प्रकट करने का ये भी एक प्रकार का लक्षण है कि आप महान नहीं हुए, इसलिए गुण प्रकट कर रहे हो आप। तो नाभा जी तो वास्तव में महान थे, इसलिए वो तो बार बार कह रहे थे प्रभु मेरी योग्यता नहीं, मेरी योग्यता नहीं। उन्होंने बड़े सारे प्रसंगों का वर्णन कर दिया, भक्तों की लीला अपरंपार, क्या मैं वर्णन करूं। भगवान गुरु जी कहते ने तुम कर पाओगे। लेकिन नाभा जी दक्षिण भारत में ब्राह्मण के वहां पर उनका जन्म हुआ था, हनुमान वंशीय ब्राह्मण थे वो। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है, हनुमान वंशीय ब्राह्मण कैसे हो गए? फिर कहते उसके पीछे क्या लीला आती है। वो ब्राह्मण भगवान की बड़ी सेवा पूजा करते थे, लेकिन संतान कोई नहीं थी। घर में एक दिन कोई भक्त आए, उन्होंने उनसे दुख देखा नहीं गया तो पूछा क्या बात है। भगवान का दिया सब है लेकिन पुत्र नहीं है। हनुमान जी से प्रार्थना करो, हनुमान जी खूब दया करेंगे। हनुमान जी से प्रार्थना की, 12 वर्ष हनुमान जी की सेवा में लग रहे हैं। हनुमान जी प्रकट हुए, हनुमान जी से मांगते पुत्र दे दो। हनुमान जी कहते ये कार्य तो पुत्र वगैरह देने का कार्य तो हमारा नहीं है, तो हमारे प्रभु का है। हम पुत्र पुत्र नहीं देते, हमारे राम जी दे सकते हैं। तो कहते ठीक है, अब राम जी से कहिए। राम जी के पास गए, राम जी ने कहा उसके तो भाग्य में पुत्र ही नहीं है। तो हनुमान जी कहते प्रभु फिर क्या होगा? कहते तुम जानो, तुम्हारा भक्त जाने। भगवान तो छूट गए वहां से। हनुमान जी आए, कहते भाई बड़ा कहते हुए दुख लग रहा है, राम जी ने तो कहा तुम्हारे भाग्य में तो कोई पुत्र ही नहीं है। वो इतना दुखी हो गया। अब हनुमान जी के सामने जब इतना दुखी हो गया तो हनुमान जी से उसका दुख नहीं देखा गया। तो हनुमान जी कहते भाई तेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, एक काम करते, मैं ही तेरा पुत्र बन के प्रकट हो जाता हूं, तेरे घर पे आ जाऊंगा। तो हनुमान जी स्वयं अपने एक अंश के रूप में उन ब्राह्मण के घर पर पुत्र रूप में प्रकट हुए थे, और वही थे नाभा जी। इसलिए उनको हनुमान वंशीय कहते हैं। अभी क्या हुआ, भगवान की लीला तो अपरंपार है। हम तो ये सोचकर अपने ऊपर कृपा का एहसास करते कोई दुख नहीं है ना, हाँ भगवान की दया है, सब ठीक चल रहा है, पैसा पूसा सब ठीक है, नौकर चाकर बंगला और गाड़ी वाड़ी सब, संतानें वगैरह सब, मतलब भगवान की बहुत कृपा है। हमारा तो भगवत कृपा का प्रमाण ये है कि सारा मामला ठीक है। यहां तो इतने मिन्नतों के बाद नाभा जी का जन्म हुआ, और जन्म से बिल्कुल अंधे, देखते ही नहीं थे। अब बताओ, इतने इतने अरसों से संतान की आश लगा के बैठे और जो संतान जन्म ले वो अंधी, अब कैसा लगेगा व्यक्ति को। समय परिस्थिति में पिताजी चले गए, माताजी के साथ में थे, और छोटी अवस्था 5 वर्ष की अवस्था में भयंकर दुकाल पड़ गया, खाने तक की किल्लतें शुरू हो गई। अब माता उनको लेकर इधर उधर भ्रमण कर रही है, क्या करे, जगह सब जगह ऐसी परिस्थिति हो गई कि दाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल हो रहा है कहीं खाने के लिए। देखो स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए हैं अपने एक अंश के रूप में, लेकिन फिर भी लीला तो लीला के रूप में चली जा रही है। 5 वर्ष की अवस्था में माता इधर उधर भ्रमण कर रही है, बालक को लेके माता के प्राण कंठे पे आ गए। बालक भी बड़ा दयनीय अवस्था में, पालन पोषण कर नहीं सकती, करे क्या। तो दो भाव बताए, कहते माता बालक को वहीं रख के छोड़कर चली गई। तो छोड़कर कहाँ चली गई, कहते शरीर ही छूट गया उसका, क्या करती, पालन ही नहीं कर पा रही वो, ऐसा भयंकर दुकाल पड़ा है। वहीं पर रस्ते पर भगवान को अर्पण करके, प्रभु आप ही का जन है, आप ही को अर्पण करते हो, माता बिचारी चली गई। उसी रस्ते पर 2 महान वैष्णव आ रहे थे, कीलदेव जी महाराज और अग्रदेव जी महाराज, और ये बालक 5 वर्ष का बहुत दुखी अवस्था का तलपता हुआ रास्ते पर पड़ा हुआ है। दोनों संत आए, दोनों संतों ने बालक को देखा, बड़ी करुणा हुई उनको, और उन्होंने महसूस किया कि बालक तो देख भी नहीं सकता। तो उन संतों ने क्या किया, अपने कमंडलों में जो जल था ना, वो जल को लेकर मंत्र उच्चारण करके बालक के आंखों पर लगा दिया। तुरंत बालक की आंखें आ गई और बालक देखने लग पड़ा। 2 महान वैष्णव की कृपा से प्रथम दृष्टि प्राप्त हुई बालक को। संसार में बालक का कोई नहीं था, बड़ी दुखमय अवस्था थी। दो संत अपने पास ले गए, उनको अपने आश्रम में ले गए, जयपुर के पास गलता गद्दी पर वहां उनका आश्रम था, वहां ले गए। बड़ा पवित्र स्थान है ये। कीलदेव जी महाराज बड़े थे, अग्रदेव जी महाराज छोटे थे, लेकिन कीलदेव जी महाराज हमेशा ध्यान अवस्था समाधि में रहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस बालक के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। अग्रदेव जी को बोला आप इसको नाम दीक्षा दो, उन्होंने उसको नाम दिया और दीक्षित किया, नाभादास नाम हुआ, दीक्षित किया। अभी गुरु जी के आश्रम में रहते हैं, सेवाएं करते हैं। गुरु जी ने उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए बोला, उनके लक्षण देख लिए, ये बालक कहते इतना महान है, इतना महान बालक कहते साधु सेवा करने योग्य है, क्योंकि साधु सेवा करने के लिए सामान्य प्रकृति के व्यक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि साधुओं के तो अपनी अपनी मौज मस्ती होती है, और उस अवस्था में जाके सेवा करने के लिए तो कहते बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति चाहिए, साधारण प्रकृति का व्यक्ति साधु सेवा नहीं कर सकता, और इसके अंदर इतनी महानता है कि यह जरूर कर सकता है। उसको साधु सेवा में लगाया। उनका कार्य क्या था, संतों की जैसी इच्छा हो, जैसा रुचि हो, वैसी सेवा करते, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई मन मुटाव नहीं, हृदय से पूरी सेवा करते उनके लिए। और उसका परिणाम क्या हुआ, जो जो संत आते उनकी सेवा करते, सब संत आशीर्वाद दे देके चले जाते। संतों की सेवा करना आसान नहीं होता, भगवान की सेवा करना फिर भी आसान होता है, लेकिन वो भी कलयुग में जीव नहीं करता, भाग्यशाली जीव ही भगवान की तरफ उन्मुख होता है, और उसमें भी अनन्य रूप से संतों की सेवा करना और भी कठिन होता है। दुर्वासा जी ऋषि जैसे संतों की सेवा कोई नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। कुंती देवी ने की थी, इसीलिए तो उनको आशीर्वाद मिला, राधा जी ने भी की थी। ऐसे विचित्र विचित्र प्रकृति के संत होते, रात को 2 बजे उठेंगे, कहते खीर बनाओ, अच्छा बना दी, ले आओ, ले आए, पूरे शरीर पे लगाए, अब सो गए। अब पूरे शरीर पे आपने इतनी मेहनत करके खीर बनाई और व्यक्ति पूरे शरीर पे लगा ले और फिर बाद में सो जाए, तो आप क्या कहोगे, ये क्या करके आ रहे हो आप, ये क्या है, 2 बजे इसलिए खीर बनवाई थी आपने। तो जो मूड में आए वो करेंगे, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है। तो इनको संतों की सेवा में लगाया था, ये कहे देखते हुए कि बड़े उत्तम प्रकार के गुण है। तो कहते सामान्य व्यक्ति संत सेवा का संकल्प करे तो बड़े सावधान रहना चाहिए, अपराध बहुत होते हैं, इसलिए पहले अपने आप को किसी संत के कठोर मार्गदर्शन में शुद्ध करे और फिर किसी संतों की सेवा में जाए तो ठीक बात है, अन्यथा नहीं। जीव गोस्वामी का दृष्टांत रहता है। जीव गोस्वामी जब वृंदावन में थे तो उनके पास कई लोग सीखने के लिए आते थे, तो मन में भाव आया कि गुरु जी संतों की सेवा करें, वृंदावन भूमि है, संत आते जाते रहते हैं। जीव गोस्वामी ने कहा कर पाओगे क्या, कहते क्यों नहीं करेंगे, कहते अगर कर सकते हो तो करो, लेकिन मैं परामर्श नहीं कर रहा हूं। जीव गोस्वामी जैसे विद्वान व्यक्ति अगर कुछ बोले तो उसका महत्व कितना होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरु जी, प्रयास करेंगे, करेंगे, पूरा मन लगाकर करेंगे। अब क्या सेवा की, कुछ जगह बना दी जहां संत थोड़ा रुक सकते हैं और भोजन पानी की व्यवस्था करनी है, तो जो भी आगंतुक संत आएंगे तो वहां ठहरेंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे, हाथ पैर मुंह धोएंगे, थोड़ा शांति का अनुभव करेंगे, भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो संत आते जाते थे, ये लोग सेवा करते रहते थे। एक दिन के प्रसंग में रात्रि को संत आए, थके हारे सोए दिन भर के काम करके, और रात्रि को संत आ गए। रात्रि को संत आए, अब पता है कि यहाँ पर सेवा होती है, यहाँ पर कुछ मिलता है। संत आए, कहते भिक्षा मिलेगी, अब कोई उठ ही नहीं रहा है। जी गोस्वामी तो रात रात भरभजन कर रहे थे। संत आए हुए, अब संतों ने उनको उठाया, चेष्टा की कि भाई कुछ भोजन पानी मिलेगा। अब वो जो सोए थे वो उठ गए और झुंझलाने लगे, ये कोई भोजन पानी का टाइम है, आधी रात को आते हो, पहले आ जाना चाहिए, बता के आना चाहिए, ये क्या बात होती है आधी रात को आते हो। बड़ा गुस्सा किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नहीं है तो ठीक है चले। जी गोस्वामी ने घटना सारी देख ली और जी गोस्वामी ने बुलाया, कहते कल से सेवा बंद कर दो। कहते इतने दिन सेवा करके जो पुण्य नहीं कमाया था ना, वो रात्रि को कहते सारा गवा दिया। कहते संत सेवा करनी हो ना तो उसके लिए इतने उत्तम गुण लगते हैं कि व्यक्ति आधी रात को भी खड़े पैर लगा रहेगा, फिर वहां झुंझलाट नहीं अनुभव कर सकता वो। देखो उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति अगर हमको नींद में से जगाए, हमको गुस्सा तो आता है, लेकिन नींद में से जगा के बोले उठ भाई उठ भाई, हम उठेंगे थोड़ा गुस्से से और फिर बोले ये 10 किलो सोना मैं रास्ते से जा रहा था पड़ा था, मेरा किसी काम का नहीं, ले तू ले ले, आएगा गुस्सा? बताओ आएगा गुस्सा? हम लेके सो जाएंगे ना वापिस से। तो कहते 10 किलो सोने से संतों का मूल्य हमने कम लगा लिया ना, फिर तो कम लगाया ना मूल्य। और कहते संतों का मूल्य तो भगवान भी नहीं वर्णन कर सकते, हमने तो कम मूल्य कर दिया उनका। इसलिए कहते जड़ प्रकृति में आसक्त व्यक्ति जो होता है वो सर्वांग रूप में ऐसे उत्तम अधिकारी प्रकृति के संतों की सेवा करना बड़ा कठिन हो जाता है उसके लिए। उसके लिए पहले किसी एक कठोर निर्देशन वाला जो संत होता है ना, उसके संरक्षण में कुछ समय गुजारना पड़ता है और वहां पर अनेक अनेक प्रकार के दोष डंडा खा खा के निकालने पड़ते हैं। और तब व्यक्ति जब अपने आप को शुद्ध करेगा और मानसिक धर्म से ऊपर उठ जाएगा जब, तब फिर अच्छी संतों की सेवा कर पाएगा। और ये गुण अग्रदेव जी महाराज ने किसमें देखे थे? नाभाजी में देखे थे। इसलिए कहते आप कोई दूसरा काम मत करो, सिर्फ संत सेवा करो। जयपुर नरेश को पता चला एक दिन मान सिंह को कि संत सेवा बड़ी अच्छी करते और बड़े अच्छे व्यक्ति है, सबको बुलाया एक दिन वहां पर और कहते कुछ बताओ अपने मुख से कुछ बात करो। बहुत सारे पंडित लोग बैठे हुए थे, नाभाजी वहां पहुंच गए, नाभाजी को बोला, नाभाजी ने जो गुरु जी ने सिखाया था उन कुछ शब्दों को बताया, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण थे कि राजा मानसिंह तो बड़ा अभिभूत हो गए, इतना अच्छा ज्ञान, इतना दिव्य अनुभव। वहां बैठे हुए पंडित लोग थे, ईर्ष्या में जले जा रहे थे, कहते अभी इसको नीचे उतारते। कहते ये बताया आपने, वो बताया, सब कुछ बताया, बात सही है, लेकिन बताओ तो सही, आपका नाम बताओ, गोत्र बताओ, जाति बताओ, कहां से हो बताओ। जाति के ऊपर उंगली करके नाभाजी को दबाने का प्रयास किया, क्योंकि नाभाजी बेचारे खुद ही नहीं समझते थे। तो नाभाजी ने वहां कह दिया कि संतों की जाति पाति नहीं होती है, गंगा में नहाने वाला हर व्यक्ति पवित्र ही होता है, वहां जाति पाति कोई नहीं पूछता। कहते हिरण जब मर जाता है ना तो उसका जो मृग चरम होता है ना वो भी पवित्र होता है, हड्डी को छूने से स्नान करना पड़ता है लेकिन शंख भी पवित्र होता है। बार बार मधुमक्खी जी मुंह लगा लगा कर जिस फूल को लगता है कि जूठा कर देती है, लेकिन उसी फूल को भगवान को भी चढ़ाया जाता है और उसी फूल का इत्र भी भगवान को लगाया जाता है, कुछ भी अपवित्र नहीं होता। हर प्रकार का मल अपवित्र होता है लेकिन गाय का गोबर पवित्र होता है। इसी प्रकार हो सकता है कि किसी निम्न जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति निम्न प्रकृति का हो, लेकिन एक संत जो होता है वो किसी भी जाति में जन्मा हो उसके लिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात उन्होंने जब समझाई ना, अपनी जाति बताने की बात ही नहीं खोली, अलग से ही उतने उदाहरण दे दिए ना कि फूल को तोड़ते समय कोई ये नहीं पूछता कि कहाँ उसका जन्म हुआ है, कीचड़ के पास में हुआ है, बगीचे में हुआ है, फूल फूल होता है। इसी प्रकार संत संत होते हैं, संतों के प्रति कहते इस प्रकार का दुर्भाव नहीं किया जाता कि तू तो निम्न जाति से आया है भाई। निम्न जाति के दो शुरुआत की अवस्था में हो सकता हो रहते हो, वो सिर्फ निम्न जाति के नहीं होते, वो तो अनंत जन्मों के कर्मों के भी होते हैं। उच्च जाति में भी दोस्त होते हैं, दोस्तों जीव मात्रा में होते हैं, शुरुआत की अवस्था में हो सकता है दोष होते हो, लेकिन जब भक्त भक्ति करते जब उन्नत अवस्था को पहुंच जाता है फिर ये कहना कि ये जो वैष्णव थे ना वो तो इस जाति के थे और मुंह सिकोड़ लेना, कहते ये तो बड़ा अपराध हो जाएगा। ऐसी उच्च अवस्था में पहुंचे हुए संत के बारे में फिर कभी भी ये नहीं सोच सकते कि उनकी जाति वगैरह क्या थी, सिर्फ वहां पर एक ही जाति रह जाती है, वो होती है वैष्णवता। भगवान के प्रति उनकी प्रीति बस एक ही मात्र चीज रह जाती है। तो वल्लभाचार्य जी वहां पर एक दिन आए हुए, तो वल्लभाचार्य ने सोचा कि ये महान व्यक्ति है, इसके माध्यम से ज्ञान का प्रकाश होगा। पूछा दो बातें, तुम्हारे दृष्टि से कौन महान है? अनेक देवताओं में कहते भगवान ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, कहते भगवान से भी कोई बड़ा होता है, कहते वैसे तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन आग्रह पूर्वक पूछते तो बताता हूँ कि भगवान के भक्त तो भगवान से भी बड़े ही होते हैं। पहले बताया भगवान का नाम भगवान से बड़ा होता है, क्योंकि नाम तो जीवों को तारता है, हर परिस्थिति में जाकर तारता है, कहते बात तो सही है। नाम से बड़ा कौन होता है, कहते नाम देने वाला संत, वो भगवत नाम से भी बड़ा होता है जो भगवान के नाम को जीवों को देता है। कहते वो संत से बड़ी कोई चीज होती है, कहते संत से बड़ी चीज होती है संतों का प्रसाद, वो संत से भी बड़ी चीज होती है संतों की चरण रेणु, संतों का अधरामृत, संतों का चरणामृत, ये जो भी संतों का प्रसाद होता है, संतों का आशीर्वाद, संतों की वाणी, जो भी कुछ होता है संतों के संलग्न में प्रसाद के रूप में, वो संतों से भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। कहते भगवान से, भगवान का नाम भगवान के नाम से संत, और संतों से बड़ी तो संतों की प्रसाद ही सिद्ध, संतों के चरण रेणु हो तो शीघ्र ही शीघ्र जीव को कल्याण करती है। कहते इससे भी बड़ी कोई चीज होती है तो बताओ। कहते महात्मा जी आपका बड़ा सम्मान करता हूं मैं, लेकिन तीन बार बड़े यत्न पूर्वक बोल देता हूं मैं कि इससे बड़ा जगत में कुछ नहीं हो सकता। आप पूरा विश्व भ्रमण कर लेंगे, हर प्रकार का ज्ञान निचोड़ लेंगे, तो भी इससे बड़ी चीज कहीं आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तब वो बड़े प्रसन्न हो गए कि सारे भक्ति के रहस्य को इसने कहते सीख लिया है, पूर्ण रूप में समझ लिया है कि जिस व्यक्ति के हृदय में इतनी उच्च अवस्था में संतों के प्रति मर्यादा बुद्धि जब हो जाती है, वो व्यक्ति की अपनी खुद की अवस्था कितनी ऊंची होती होगी। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भी समझाए और प्रभुपाद भी बताए तात्पर्य में, कृष्ण के प्रति बुद्धि रखे भजन करने वाला भक्त कनिष्ठ अधिकारी का है, लेकिन कृष्ण से भी बढ़कर कृष्ण भक्तों में बुद्धि रखे भजन करने वाला व्यक्ति मध्यम अधिकारी अवस्था का व्यक्ति है। कृष्ण के प्रति आकर्षित तो कई लोग हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण भक्तों के प्रति बुद्धि कृष्ण से भी बढ़कर रख के आकर्षित होने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, और वो उनसे उच्च कक्षा के होते हैं। इसलिए नाभाजी बड़े उत्तम कक्षा के भक्त थे और बड़े योग्य व्यक्ति थे कि वो संतों को समझते भी थे, उनके भावों को समझते थे, इसलिए उनके गुरुजी ने कार्य सौंपा था कि तुम भक्तों के चरित्रों की रचना करो, और उन्होंने अपना जो शेष जीवन था वो शेष जीवन भक्तों की सेवा में और उनके चरित्र के गुणगान में लगाया था। तो यही जो दिव्य ग्रंथ बनाए, अनेक भक्तों का चरित्र का भक्त चरितावली, जिसको भक्त माल कहते हैं, भगवान जिसको धारण करते जिस माला को, और भक्तों की कथाओं को सुनकर व्यक्ति को भगवत कथा सुनने जैसा लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम भक्तों के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े, और ये भक्ति मार्ग का सबसे उत्तम उपाय है, तो हम यही प्रयास करेंगे एक महीना भक्तों के सानिध्य में उनके चरणों के आशीर्वाद से हमारे अंदर भक्तों के प्रति खूब सम्मान बढ़े, वैष्णव के प्रति अनन्य बुद्धि बने, गुरु और गोविंद खड़े हो तो गोविंद के चरणों में जाने की बजाय जीव गुरु के चरणों में जाए, ऐसी उच्च बुद्धि का विकास हो उसके हृदय में, तो ये संतों की कृपा से ही हो सकता है, सामान्य रूप में नहीं हो सकता। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं, आप सभी का धन्यवाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के, श्री गौर राधा कृष्ण भगवान के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कल 7:30 बजे समय पे आइए, दीपदान कीजिए।